रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सेना परिचालन के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की स्वीकृति। निर्वाचन के विषय में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेकपा एमाले और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ विचार विमर्श। जेएनजी आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 283 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल द्वारा जानकारी। और हांगकांग के आवासीय भवनों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 65 हुई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने आगामी फागुन 21 गत्ते को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में सेना के परिचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रधानमंत्री की सिफारिश और मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार फागुन 21 गत्ते को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना परिचालन की स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और नेकपा एमाले के नेताओं के बीच प्रतिनिधि सभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई चर्चा में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल तथा एमाले की ओर से महासचिव शंकर पोखरेल, उप महासचिव प्रदीप ग्यवाली और केन्द्रीय सदस्य महेश बरतौला ने भाग लिया। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्की और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर के बीच आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव सहित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री कार्की ने अध्यक्ष ठाकुर से आगामी फागुन 21 गत्ते को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने में पूरी भूमिका निभाने का अनुरोध किया। मुलाकात में अध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि चुनाव की तैयारी में है और संभावित गठबंधन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि समृद्ध नेपाल निर्माण के अभियान में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से आंतरिक पूंजी निर्माण का आयाम महत्वपूर्ण है। 8वें सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा आज प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि देश की सामाजिक सुरक्षा के अंतर पीढ़ीगत लागत संतुलन और इसे समतामूलक बनाने के लिए योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन अपरिहार्य है। प्रधानमंत्री कार्की ने सामाजिक सुरक्षा को स्थायी बनाने के प्रयासों में सरकार के रचनात्मक सहयोग की बात दोहराते हुए रोजगारदाताओं से अपने श्रमिकों और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बोझ नहीं बल्कि गौरव के रूप में लेने का आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना दिवस के अवसर पर कोष में सबसे अधिक योगदान देने वाले संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निजी व्यावसायिक संस्थानों को कोष द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर संचार तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्री जगदीश खरेल की उपस्थिति में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संचार संस्थानों, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, रासस, गोरखा पत्र, प्रेस काउंसिल और न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कोष में पंजीकृत करने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने बताया है कि आज से सभी सरकारी संचार माध्यमों में योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। सिंहदरबार स्थित संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आज पत्रकारों से बात करते हुए संचार मंत्री खरेल ने बताया कि सरकारी संचार माध्यमों, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रीय समाचार समिति, गोरखा पत्र, प्रेस काउंसिल नेपाल और न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति में कार्यरत सभी संचार कर्मियों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने हेतु द्विपक्षीय समझौता हुआ है। संचार मंत्री खरेल ने बताया कि कानूनी दायरे में रहते हुए और किसी दोहरेपन से बचते हुए संचार कर्मियों और कर्मचारियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर संचार मंत्री खरेल ने औपचारिक और निजी संचार माध्यमों में भी योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने के लिए संबंधित धारक संचार माध्यमों से आह्वान किया। गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि निर्भय और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। संसद सचिवालय सिंहदरबार में आज हुई राष्ट्रीय सभा की सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन की बैठक में गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि जेंजी आंदोलन के दौरान लूटे गए हथियारों और फरार कैदियों द्वारा चुनावी सुरक्षा के लिए पैदा की जा सकने वाली चुनौतियों के प्रति सरकार सचेत है और लूटे गए हथियारों तथा फरार कैदियों की तलाश के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय में एक विशेष जांच दल गठित किया गया है। गृहमंत्री अर्याल ने समिति को जानकारी दी कि आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 595 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 283 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से ऐसा लगता है कि सरकार, जेंजी समूह और राजनीतिक दल एक दूसरे को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बैठक में सांसदों ने राजनीतिक विश्वास का माहौल बनाने के लिए तत्काल राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाने और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने जैसे मुद्दों की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कराया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उच्च अदालत पाटन ने सोना तस्करी के आरोप में अभियुक्त पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा को 20 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइराला और तेजेंद्र प्रसाद शर्मा सापकोटा की संयुक्त पीठ ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर अभियुक्त को मुकदमा चलाने तक हिरासत में रखने जैसी स्थिति नहीं दिखाई देती। अदालत ने आश्विन 29 के हिरासत आदेश को संगत पाते हुए उसे रद्द करते हुए महरा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा और जनता समाजवादी पार्टी जसपा के एकीकरण पक्षधर समूह जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा बहुमत विद्रोही समूह और नेकपा विद्रोही समूह के बीच एकता की घोषणा की गई है। काठमांडू में आज एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी एकता की घोषणा करते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने कमला नगर पालिका धनुषा के तत्कालीन नगर प्रमुख राम उद्गार गोइत सहित 10 लोगों के विरुद्ध आज विशेष अदालत काठमांडू में आरोप पत्र दर्ज किया गया है। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौड़ेल के मुताबिक लगमा बाजार नजदीक के पोखरी के डील में मिट्टी भरने तथा घाट निर्माण के ठिक्का प्रक्रिया में मिलजुल कर सार्वजनिक संपत्ति अपचलन किए के अभियोग में उन लोगों के ऊपर आरोप पत्र दर्ज किया गया है। आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए स्वीकृत कर सहित ₹75 लाख लागत अनुमान किए गए परियोजना के बोलपत्र प्रक्रिया में सबसे कम कबोल ₹42,74,551.71 के शेट स्क्वायर कंस्ट्रक्शन प्राली के साथ समझौता नहीं करके दूसरी घटी कबोल ₹72,21,730.7 करके इंफ्रास्ट्रक्चर S&B बिल्डर्स प्राली को गैरकानूनी रूप में ठिक्का देने की आयोग का काम किया गया था। आरोप पत्र में गोइत सहित कार्यपालिका सदस्य धनेश्वर यादव, धर्मनाथ मंडल, पलटू कवारी, विनोद राम, शमशुल मियां, मोमिन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार सढ़ान, लेखापाल संजीव कुमार महतो, जिनसी शाखा प्रमुख जुगल किशोर यादव तथा ठिक्का लिए कंपनी के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव समेत को भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार सजाए को मांग सहित प्रतिवादी बनाया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता पौड़ेल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग के एक बहुमंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के कारण कम से कम 65 लोग की मौत हो गई है, वहीं 100 से अधिक लोग अब भी लापता है। बुधवार को स्थानीय समयानुसार 2:51 बजे वांग फुक कोर्ट में आग लगी, जो हांगकांग के ताइपो जिले में मौजूद एक बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। 8 इमारतों वाले इस कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतों में आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने 4 इमारतों में लगी आग पर काबू पा लिया है। उन्हें उम्मीद है कि शाम तक बाकी इमारतों में भी लगी आग नियंत्रित कर लिया जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार मरने वालों में इंडोनेशिया के 2 प्रवासी मजदूर शामिल है, जबकि 2 घायल है। मंत्रालय ने अब तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। वांग फुक कोर्ट को 1983 में बनाया गया था। इसमें मौजूद हर इमारत 31 मंजिल ऊंची है। 2021 में हुई जनगणना के अनुसार 1,984 फ्लैट्स वाले इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 4,600 लोग रहते थे। हालांकि आग लगने के वक्त कितने लोग वहां थे, इनकी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सेना परिचालन के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की स्वीकृति। निर्वाचन के विषय में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेकपा एमाले और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ विचार विमर्श। जेएनजी आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 283 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल द्वारा जानकारी। और हांगकांग के आवासीय भवनों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या हुई 65। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।